Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, क्रिएटिविटी अर्थात कला, ये हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है जो जिंदगी को सीखना चाहता है, जिंदगी से कुछ जानना चाहता है। उस क्रिएटिविटी को कभी भी मरने मत दीजिए, क्योंकि वही बच्चा जो आपके अंदर है वो आपको सही तरह से जिंदगी जीने की राह बताएगा। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं बीके सतीश भाई जी, जो कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। वो बहुत ही बड़े सिंगर हैं, साथ ही साथ उन्होंने सैकड़ों गाने लिखे हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के लिए। वो करीबन 35 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर्स में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे प्यारे भाई के साथ आज हमारी मुलाकात होगी, आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो।
नमस्कार, ओम शांति।
भाई जी, आपको ब्रह्मा कुमारीज़ के पायदान पर बहुत ही ऊंचे दर्जे पर देखा जाता है। कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर की कला है, जो आपका आर्टिस्ट है अंदर का
जी,
उसने आपको नाम भी दिया, साथ में एक अस्तित्व भी दिया, और साथ ही साथ एक ऐसा पायदान दिया है जहां पर लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं।
जी, मेरा सौभाग्य।
बिल्कुल, मैं इस पर एक सवाल पूछना चाहूंगी
जी,
कि कला जो होती है ये मेरे हिसाब से तो ईश्वर की देन होती है।
सच,
हम सिर्फ उसे निखारते हैं। वो ऐसी चीज है जो हम पेट से सीख कर आते हैं और धीरे धीरे उसको हम निखारते हैं
जी। जी,
इस बात में कितनी सच्चाई है?
आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं समझता हूं कि कला ये जीवन में जो भी आती है, तब तक वो कला कला कही जा सकती है जब तक वो दूसरों का भला करे।
करेक्ट।
कभी किसी ने नारा दिया, कला कला के लिए है, आर्ट इज फॉर द सेक ऑफ आर्ट। लेकिन और कोई कहे, किसी ने कहा भी कला मनोरंजन के लिए है
जी,
तो कला को इतनी सीमित दायरे में बांधना मैं समझता हूँ उचित नहीं है
जी।
कला तो वो है जो भला करती हो।
बिल्कुल।
और कलाकार भी तब तक एक सही मायने में यथार्थ कलाकार है जब तक वो अपनी कला को परम कलाकार को सौंप करके चलता है।
हाउ ब्यूटिफुल।
और जब तक उस निरहंकारी बन करके चलता है, कुछ सीखने और कुछ सिखाने के लक्ष्य से चलता है, तब तक वो कला जो है उसकी एकदम एक चलती रहती है,
बढ़ती रहती
है, बिखरती रहती है और आगे बढ़ता रहता है। मैं कभी कभी इस चीज को मैं दो पंक्तियों में यूं कहता हूं, कलाकारों के लिए एक संदेश है, मेरे भाई कला जो पाई, मेरे भाई कला जो पाई, ये प्रभु उपहार है, कभी करना नहीं अहंकार है, अपनी कला से करते चलो भला, यही तो प्रभु प्यार है, मेरे भाई कला जो पाए।
बहुत अच्छा, ये आपने जो पंक्तियाँ कही हैं इस पर ही मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है भाई जी कि जिंदगी में हम रियलिटी कुछ और होती है
जी।
एक होता है सपनों की दुनिया, जिसमें हम एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं,
उसको रियल लाइफ जो कहते हैं।
एग्जैक्टली, रियल लाइफ से ज्यादा हमारी खुद की जिंदगी। सपोज अगर मैं एक बहुत अच्छी सिंगर हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही सिंगिंग मेरी जिंदगी में मुझे पैसा भी कमा के दे।
बिल्कुल।
क्योंकि आज सैकड़ों सिंगर्स हैं, उसमें से कुछ ही लोग हैं जो जिंदगी में ऐसे पायदान पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें मनी के रूप में प्रोफेशनली वो उस चीज को कर पाते हैं
जी।
लेकिन जो बचे हुए लोग होते हैं, जो करीबन लाखों में करोड़ों में होते हैं, उन लोगों के लिए वो एक सिर्फ सुकून का जरिया होती है, ना कि जिंदगी की सच्चाई।
सही बात।
ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है कि उनके लिए क्रिएटिविटी कितना जरूरी है, उनकी जो कला है उसका क्या महत्व है?
आपने बड़ा गहरा प्रश्न पूछा है
जी।
मैं समझता हूं कि देखा यह गया है, व्यवहार में अक्सर करके देखा गया है कि जब तक हमारी सोच, जितना हम ब्रॉड सोचते हैं, जितना विशाल सोचते हैं, हमारी ऊंची सोच होती है, वो हमें ज़िंदगी को बहुत ही मजबूती देती है।
करेक्ट।
और जब हम केवल संकुचित दायरे में आ जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं व्यवहार जगत में, कहीं पर फिल्म है, फिल्म जगत आजकल कलाकारों का बहुत बड़ा एक मुकाम
है, बिल्कुल।
उसमें देखते हैं कि कितने ढेर सारे आते हैं, कंपटीशंस होते हैं, ढेर सारे शोज होते हैं, उनमें धीरे धीरे करके नीचे सुकर करके कोई आते हैं
जी।
तो कोई टॉप होते हैं, कोई होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और में कला बाकी लोगों में कला नहीं है।
बिल्कुल।
कला तो उनमें भी है, लेकिन ये तो प्रतियोगिता है, उसमें आगे बढ़ गया कोई, कंपटीशन में कोई अव्वल निकल गया, कोई नहीं निकल पाते हैं। मेरा सबके लिए, पूरे कला जगत के जिसके अंदर है, यूँ तो मेरा अपना मानना ये है कि सृष्टि रंगमंच पे जो भी कार्य व्यक्ति कर रहा है, हम सब कलाकार हैं।
बिल्कुल।
और हम सब कलाकारों का वो परम कलाकार है।
ओह,
इसने हमको ये कला बख्शी है
जी,
जिसकी देन है, जिसकी उपादेयता है, जिसके वरदान से हम सब ये करते हैं। तो कोई भी कार्य करें, यदि हम परमात्मा को सौंप के करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, दिल से करेंगे, तो वो कला औरों को, औरों का भला भी करेगी, प्रेरणा भी देगी और जीवंत रहता है। कोई कोई कलाकार अच्छे होते हैं, लेकिन यदि उनके अंदर अहम होता है तो कोई उनको अहम के कारण स्वीकार नहीं करता है, दिल से नहीं मानता। हाँ, माना भी बहुत बड़े कलाकार हैं, अच्छे हैं, लेकिन सब उसको स्वीकार इतना नहीं कर पाते।
भाई जी, आपने हमारा जो ज़िंदगी बने आसान का टाइटल ट्रैक है उसको आपने क्रिएट किया है, और आपने कई सारे गाने लिखे हैं, कई सारी पोइट्रीज़ लिखी हैं। तो जब आप क्रिएट करते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस किस तरह से चलता है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपके हिसाब से जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है एक आर्टिस्ट के अंदर में, जिससे एक न्यू क्रिएशन क्रिएट किया जाए?
कोई भी रचना जब होती है तो उसके पीछे सोच तो बहुत गहरी होनी पड़ती, करनी पड़ती है, तभी उसके किसी भी हम क्षेत्र में, किसी भी छोर पे पहुंच पाते हैं
जी।
जब ये कहा गया भाई ज़िंदगी बने आसान इसके ऊपर करें, तो मैं यही सोच रहा था कि ज़िंदगी आज के दुनिया में, आज के लोगों के बीच में, आज के समाज में, आज के संसार में देखा जाए तो ज़िंदगी बड़ी जटिल होती जा रही, बड़ी कठिन सी होती जा रही जीना। लेकिन मैं सभी, जितने भी लोग हैं, वो कलाकार अपने को मानते हों या ना मानते हों, वो सब कलाकार मान करके ये समझ लें कि हम अपना रोल जो है सृष्टि में, सृष्टि मंच पे हम अपना अदा कर रहे हैं।
करेक्ट।
और इस प्रकार से हम सब कलाकार हैं, और कला कहते ही हमारे अंदर एक प्रकार से खुशी, एक प्रकार से रचनात्मकता, प्रसन्नता, ये सब चीज़ें अपने आप अंदर से जैसे निकल रही हैं।
करेक्ट।
और सच पूछा जाए तो उसी से ये पता लगता है कि मैं कलाकार हूँ। तो जो कभी भी जिंदगी में आपके उतार चढ़ाव होती है, निराशा आती है, कभी मायूसी आती है, कभी उदासी आती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं मंच पे ये रोल अदा कर रही हूँ विश्व के रंगमंच पर, और मुझे सब देख रहे हैं, मेरा इतना अच्छा रोल हो कि मैं इसको बाद में देखूं, लोग कहें वाह क्या आपने रोल किया, और सबसे बड़ी बात है कि मेरा मन कहे कि हाँ बहुत खूब ये हुआ है। तो ये जो अगर भान लोगों में आ जाए, जागृति आ जाए कि हम सब भी कलाकार हैं, तो हमें जीवन के प्रति एक जागरूकता भी आ जाए, हम उसके लिए सिंसियर हो जाएंगे, और ऐसा लगेगा कि मेरा हर काम बहुत अच्छा है, तो व्यक्ति कभी उदास नहीं होगा, कभी मायूस नहीं होगा। और मैं यही चाहता हूँ कि संसार के जितने भी लोग हैं वो खुश रहें, उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान रहे, उनकी सोच अच्छी रहे, उनका जीवन बड़ा अच्छा बीते, वो स्वस्थ भी रहें, क्योंकि जीवन जीना एक बहुत बड़ी कला है।
बिल्कुल।
और जिसने जीवन जीने की कला सीख ली, वो तो समझ लो कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। इस दायरे में जब ये गीत बनने की कोशिश, बनाने की कोशिश की मैंने, तो मेरे मन में यही आया कि कठिनाइयाँ क्या हैं, कैसे मैं लोगों को बताऊं, कैसे मैं सोचूं कि सोच सकता हूं, या कैसे मैं मदद कर सकता हूं कि जो ये सुने, संसार सुने, सभी सुने, और सुन करके देख करके ऐसा महसूस करें कि हाँ यही मार्ग है जिस मार्ग से चल करके हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान बन सकती है।
भाई जी दो चीज़ें होती हैं जो मैंने नोटिस की है, एक आर्टिस्ट या कोई भी कलाकार हो पूरे विश्व में, मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जो कलाकार होते हैं वो काफ़ी इमोशनल होते हैं।
जी जी जी।
और मेरे हिसाब से ये कुछ लोग कहते हैं कि उनकी कमज़ोरी होती है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यही आपकी स्ट्रेंथ है।
जी जी जी।
आपके हिसाब से आपकी जो जर्नी रही है, इतनी बड़ी जर्नी रही है, आपने सैकड़ों गाने लिखे हैं, उसके अंदर में इमोशनल होना कितना आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा है,
जी जी जी।
या आपके लिए कभी कभी वो एक कमज़ोरी का रूप भी बन गया है,
जी जी जी।
अगर आप हमें बता सके, क्योंकि ये थॉट हर कलाकार के अंदर ज़रूर होता है।
बहुत सही बात आपने पूछा। दरअसल मैं जिस मुकाम पर हूँ और जिस क्षेत्र में हूँ वो अध्यात्म से जुड़ा हूँ। जब मैं प्रारंभ में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर आया तो हमारी सोच एक बहुत अच्छी बनती गई
जी,
क्योंकि रोजाना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना और अपने विचारों को अच्छा बनाना, अपने बोल को भी अच्छा बनाना, जो काम दिया जाए उसके प्रति हम मन में ये था कि जो सेवा मिलेगी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आने के बाद मुझे करना है।
करेक्ट।
मैंने जी हाँ को पक्का बनाया कि हाँ जी हाँ करना है। और इस एक विशेषता ने तमाम विशेषताओं को हमारे अंदर ईजाद किया।
okay.
बढ़ाया।
okay.
मैं आज भी मानता हूँ कि जो भी कुछ हुआ इसमें चैलेंजिंग तो होती है कि एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, आप सबके सब काम करते जा रहे हैं, ना नहीं कह रहे हैं, आप कहाँ तक पहुँचेंगे? लेकिन जिस मुकाम पे मैं पहुँचा हूँ आज, इसके बदौलत मैंने महसूस किया कि यदि सबकी दुआएँ लेनी हैं, सबका आशीर्वाद लेना है, तो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी काम करते हैं तो सबकी दुआएँ लें, सबका प्यार लें, सबका आशीर्वाद लें। ये हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना देती है। इसीलिए बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, कोई हादसा उसका करेगा क्या जिसने अपने माँ बाप की दुआएं ले ली।
वाओ, ब्यूटीफुल।
तो इन सब चीज़ों ने मुझे इस बात के लिए एक प्रकार से मजबूर किया या समझने का अवसर प्रदान किया कि यदि मुझे समाज में रहना है, आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो मुझे सबकी दुआएं, सबका आशीर्वाद, सबका स्नेह, सबका प्यार लेना है। मिलनसार होना पहले हमारी आवश्यकता है। और उसी के साथ साथ तमाम कलाएं जुड़ गई, चाहे वो लिखने का हो, चाहे वो गाने का हो, चाहे भोजन निर्माण का हो, वितरण का हो, या किसी से वार्तालाप करनी, ये सब चीज़ें जो है उसी से जुड़ गई। और जो आपने कहा कि कितना सेंसिटिव होना चाहिए और उसमें जो है जो कलाकार है वो संवेदन शून्य भी नहीं हो और अति संवेदनशीलता जो है जो होनी चाहिए, दरअसल मेरा मानना ये है कि कभी यदि कलाकार आध्यात्मिक बन जाए
ओके
और ये अपने जीवन में आध्यात्मिकता का पुट रखे, तो आध्यात्मिकता के द्वारा कलाकार के जीवन में निखार आ जाती, कला में भी निखार आता है, उसके जीवन में भी स्थायित्व आता है, उसके जीवन में जो वैल्यूज़ हैं वो जो है आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ जाती हैं
जी।
तो ये बहुत आवश्यक है। मैं किसी भी कलाकार को, सबको मैं कहना चाहूँगा कि यदि वो आध्यात्म का मतलब ये नहीं कि वो सन्यासी बने या कोई धार्मिक बने या कोई ये बने, इसको अध्यात्म नहीं कहते। अध्यात्म का मतलब ये है कि वो अपनी जो ओरिजिनल जो अपनी स्थिति है
जी।
कि जैसे कि मैं अध्यात्म को ये मानता हूँ कि हम ये समझते हैं कि मेरा शरीर है, अगर वो ये समझ लें कि ये शरीर मेरा तो है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा और हम उस पिता के संतान हैं, सारा विश्व वो हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, वसुधैव कुटुंबकम जो कहा गया है, या विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो इसी से पनपती है, तो सारी दुनिया में सब मैसेज अच्छा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अति संवेदनशीलता भी अच्छी नहीं है और संवेदन शून्यता भी अच्छी नहीं है।
okay.
एक कवि के लिए, एक रचनाकार के लिए तो हर एक के भावनाओं को समझना, संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम किसी के दर्द को नहीं समझ सकेंगे तो हम अपनी कला में, अपनी रचनाओं में किसी के दर्द को कैसे उभार सकते हैं, कैसे व्यक्त कर सकते हैं।
ट्रू।
तो ये बहुत जरूरी है कि संवेदन युक्त होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए।
बिल्कुल।
एक छोटी सी बात बताऊं आपको, हिंदी जगत में एक बहुत बड़े कवि रहे हैं
जी,
सुमित्रा नंदन पंत जी।
ओके।
उन्होंने एक जगह कवि की जो प्रारंभिक होती है, कवि कैसे बनता कैसे, दो लाइनों में कही बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान।
वाओ।
तो हर एक, जितने भी रचनाकार हैं
जी,
चाहे वो वाल्मीकि से लेकर के, तुलसीदास से लेकर के, जो भी हम समाज में जिन्होंने भी दिया है, जिन्होंने स्थान बनाया, जो लोगों के पाठ्यक्रम में पढ़े जाते हैं और जो आदर्श बन गए हैं, उन लोगों ने लोगों की भावनाओं को समझा, वो संवेदनशील रहे, किसी की बात को जान करके, तब जो है उसको वो उसमें अपनी रचना में वो उभार पाए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम संवेदनशील तो हों ही, लेकिन अति संवेदनशीलता, जिसको छुई मुई जिसे कहते हैं भाई, हमारी स्थिति हो डोंट टच मी, ऐसा हो छुई मुई ना बन जाए, या कोई किसी ने थोड़ा धक्का दे दिया तो बड़ा मायूस हो जाएगा।
Correct.
इसी से संबंधित एक उदाहरण मुझे बहुत अच्छा याद है। मैं आज से 25 साल पहले
जी,
उन दिनों में 20-25 साल पहले, मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं मुंबई में गया था और कवि प्रदीप जी से मेरी मुलाकात होती रही
जी,
विले पार्ला सेवा केंद्र पर आया करते थे। तो उनकी जो रचनाएं हैं, चाहे उन्होंने लिखा है मेरे वतन के लोगों, जिसको सुन करके नेहरू जी की आंख में आंसू आ गए, और जो पूरा सारा संसार सुनता है और कहता है कि क्या रचनाएं हुई। उन्होंने आज़ादी के दिन थे उन दिनों, जब 62 में जब भारत और चीन की जो लड़ाई हुई थी, उस समय पर जो लोगों में, जो समाज में व्याप्त बुराई थी, उसको देखकर कोई जो दर्द से उनसे निकला, आज के इंसान को क्या हो गया है, इसका पुराना प्यार कहाँ, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये सब जितने भी जो गीत उन्होंने लिखे, कविताएं लिखी, गीत लिखे, जो रचनाएं उन्होंने की, तो उसको देख कर लगता है कि उनके, उनको सबसे बड़ा दर्द हुआ कि हम अपने ही कारनामों से, हम अपने ही व्यवहार से, हमने अपने देश को यहाँ तक पहुँचाया है, हम मिलकर रहें, वो मानवता से रहें, हिल मिल के रहें, सबसे व्यवहार में अच्छा रहें। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा वो दिया, उस समय का दृश्य खींचा और बड़े सहृदय रहे हम दोनों की, बड़ी अच्छी मुलाकात हो गई, दो तीन मुलाकात ऐसी ऐसी अच्छी हुई, क्योंकि वो भी रचना करते थे, मेरी भी रचनाएँ थोड़ी होती थी, तो हंसी हंसी में भी कई बात होती थी। मुझे कुछ शब्दों में उन्होंने तुलसीदास से कहा, जैसे मतलब रचनाशीलता में ही गुम रहना, मैंने कहा, उनको निमंत्रित भी किया और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी हुई, उनकी रचनाओं के बारे में भी कहा, तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह समझा, उनको बहुत अच्छा लगा कि आपके यहाँ जो श्वेत वस्त्र में आप सब रहते हैं, मुझे ये बहुत प्रिय लगता है और आपका मेडिटेशन बहुत प्रिय लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने लिखा, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, उन्होंने ये लिखा, योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी, तुम एक दुनिया तुम्हें दिखाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी, बड़ा अच्छा लिखा है। आज वेला है मंगल मिलन की, इस तरह से है कि वातावरण में बड़ी सुगंध है, साधको मन की खिड़की को खोलो, भर लो आनंद अंतःकरण में, बड़ी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। तो उसको देखकर ऐसा लगा कि एक रचनाकार, वो जब हर एक के दिल को जानता है, किसी की समस्याओं को जानता है, किसी के कष्ट को जानता है, किसी के दुख को जानता है, और वो दुख के साथ उसको फील करता है, अंतर में फील करता है, अनुभव करता है, तब उसकी रचना में वो चीज़ निकल के आ पाता है।
बिल्कुल।
लेकिन जैसे आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता, हमें आज समाज में चारों तरफ विद्रूपता दिखाई पड़ रही है। अगर मैं ये कहूँ कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, तो दो पंक्ति हैं, भोर हुई
जी,
जब आँख खुली तो, खड़ी उदासी मिली द्वार पर, महामृत्यु का तांडव देखा, पड़ी नजर जब समाचार पर, तो हम देखते हैं एक अखबार उठाकर देख लें तो हमारी संस्कृति का कितना पतन हुआ है। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कला और संस्कृति आज के दौर से जो गुजर रही है, अपने बड़े संक्रमण के दौर से गुजर रही है, बड़ी यूँ कहिए प्रदूषित हो गई, बड़ी पोल्यूटेड हो गई। उसको यदि और सब बातों में, भाई चलो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, और ध्वनि प्रदूषण है, कोई और प्रदूषण है, उसे तो संसार बच सकता है, प्राकृतिक प्रदूषण से तो दुनिया बच सकती है, लेकिन जिस समाज में सांस्कृतिक प्रदूषण हो जाए वो समाज अधिक जिंदा नहीं रहता है। और भारतीय संस्कृति तो बड़ी अनमोल है, भारतीय संस्कृति तो सारे संसार को मार्ग दिखाती रही, और भारतीय संस्कृति की इसी महानता के कारण आज भी सारे संसार में भारतवर्ष को विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है, ये आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, ये लाइट हाउस है, सारे संसार को मार्ग दिखाने वाला है। लेकिन जिस तरह से भारत में आज हमारी सांस्कृतिक स्थिति का जो प्रदूषण हुआ है, जो डिग्रेशन हुआ है, उसके आधार से ऐसा लगता है कि अब हमको अपने भारतीय संस्कृति को समझना चाहिए, और अगर हम बदलना चाहते हैं इस दौर को तो हमको अपनी सोच बदलनी चाहिए। इसलिए कहा गया कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की आवश्यकता नहीं, कश्तियों का रुख बदलो तो किनारे बदल जाएंगे।
सो ब्यूटीफुल भाई जी, आज का जो ये हमारा जर्नी रहा है कला और संस्कृति और एक आर्टिस्ट, इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की। हमने जाना कि किस तरह से एक आर्टिस्ट को परिपूर्ण जिंदगी जीने में किस तरह से उसका इमोशनल एस्पेक्ट भी उसे हेल्प करता है, उसकी क्रिएटिविटी और उसका दिल।
जी,
मैंने ये नोटिस किया, जितना मैं समझ पाई कि एक आर्टिस्ट को दिमाग से नहीं सोचना चाहिए, दिल से सोचना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच का बैलेंस होगा तो वो एक बहुत परिपूर्ण आर्टिस्ट बन सकते हैं।
थोड़ा सा यहाँ कहना चाहूंगा
जी
कि दिल भी चाहिए तो दिमाग भी चाहिए।
अच्छा, दोनों,
दोनों का संतुलन चाहिए।
जरूर भाई,
केवल दिल से काम नहीं चलता है यहाँ पर।
करेक्ट,
दिल को तो बहुत चोट लगती है, बड़ी ढेर सारी बातें लगती हैं, इसलिए उसको आध्यात्मिक होना भी चाहिए
बहुत ज्यादा।
कलाकार अगर आध्यात्मिक बन गया तो उसकी कला में निखार आ जाता है। और मैंने महसूस किया अपने सूरी विश्वविद्यालय में आने के बाद कि मैं केवल कवि नहीं हूँ, मैं केवल गीतकार नहीं हूँ, मैं केवल लेखक नहीं हूँ, मैं केवल वक्ता नहीं हूँ, मैं केवल ये भी नहीं कि मैं केवल राजयोगी भी हूँ, ऐसा भी नहीं। मेरे राजयोग के साथ समाज को मुझे क्या देना है, तो दोनों का एक अच्छा संतुलन चला है।
बहुत अच्छा,
क्योंकि बैलेंस अगर है तो ही हमारी ज़िंदगी जो है आगे बढ़ती है। तो हमारी लाइफ में बैलेंस रहेगा तो ब्लेसिंग मिलेगी, और ब्लेसिंग मिलेगी तो हमारा लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगा।
ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस।
बहुत शुक्रिया,
ओम शांति,
स्वागत है।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने एक नए नजरिए को देखा, एक आर्टिस्ट से बात की, आज हमने जाना कि किस तरह से उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, कहीं ना कहीं उनकी कला जो है वो उनकी ज़िंदगी में उन्हें सब कुछ दे रहा है, उन्हें इमोशनली भी स्ट्रांग बना रहा है, साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी में कोई भी तरह की कमी नहीं है। दोस्तों, वो तभी ही हो सकता है जब एक आर्टिस्ट आध्यात्मिकता को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हमें सन्यासी बन जाना है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि हमको अपनी ज़िंदगी में ईश्वर को सदा साथ रखना है। अगर आप उनको सदा साथ रखेंगे और अपनी कला को उन्हें सौंपेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी कला में चार चांद लग जाएगी और फिर आपको कोई भी चीज़ अप्राप्त नहीं रहेगी। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।